आज यह मंच परम श्रद्धेय आदरणीय सुषमा दीदी जी के आने से सुशोभित हुआ है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ दीदी जी का अभिवादन करते हैं। मधुमय मोहक पावन संध्या वेला स्वागत के गीत गाती है। स्वागत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दीदी जी आप खुशियों का गुलदस्ता है, रूहानी महफिल की शान है आप, खुशियों का गुलदस्ता है आप, आज की इस सभा के लिए विशेष और खास है आप। दीदी जी बाल्यकाल से ही आपको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि थी, लौकिक पढ़ाई पूरी करके आपने अपना संपूर्ण जीवन 1971 से ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आपने यूरोपियन कंट्री जर्मनी फ्रांस बेल्जियम जैसे अनेक देशों में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। वर्तमान में आप जयपुर सब जोन की मुख्य संचालिका है। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की भी जोनल कोऑर्डिनेटर है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय सुषमा दीदी जी विशेष माउंट आबू में होने वाली सभी योग भट्टियों में अपने विशेष क्लासेस कराती है और मास्टर ट्रेनिंग भी कराती है। आज बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे बीच पहुंचे हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए हम निवृत्त कैसे बने। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति। संगम युग की सुहानी वरदानी घड़ियों में बाबा के बच्चे अपनी अपनी सच्ची कमाई करने में लगे हुए हैं, उसमें भी विशेष जब हम मधुबन में आते हैं तो हमें कमाई करने का एक विशेष मौका सुअवसर मिलता है। हमारी कमाई एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन ये कमाई जन्म जन्मांतर के लिए है। उसमें भी 21 जन्म तो गारंटीड है। हम जो अभी कमाई करेंगे 21 जन्म तो हम निश्चिंत आराम से बैठकर इस कमाई को एंजॉय करेंगे, खाएंगे। ये एक ऐसी अविनाशी कमाई है जो हमारे साथ भी जाती है और कहीं रास्ते में बीच में ही खो नहीं जाती है, खूट नहीं जाती है। अविनाशी बाप, बाप भी है, सत्य टीचर भी है तो सतगुरु भी है। सर्व संबंध उसके साथ है। हमसे ज्यादा चिंता किसको है? हम तो फिर भी अलबेले हो जाते हैं। कभी ध्यान आएगा, अच्छा भाई योग नहीं किया, चलो अभी योग कर लेते हैं। एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा, बहुत लगन वाला होगा तो 3 घंटा बैठकर योग करेगा, पर वो भी रोज नहीं, कभी कभी। लेकिन बाबा को हम बच्चों की इतनी चिंता है, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारी अविनाशी कमाई करवाने के लिए आया हूं, तो तुम बच्चे क्या करो, इस सच्ची कमाई को, अविनाशी कमाई को लगन से करो। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कमाई करने के लिए क्या चाहिए? हमारी लगन, हमारी रुचि, हमारा पुरुषार्थ किस ओर रहे, अंदर में एक धुन लगी रहे कि अब संगम युग की घड़ियों में मुझ आत्मा को अपनी जन्म जन्मांतर की कमाई करनी है और इस जन्म जन्मांतर की कमाई के लिए साधन कौन सा है। दुनिया में तो आपको बिजनेस करना हो तो आप सोचते हैं ना, कौन सा बिजनेस करें, कहां करें, किसके साथ मिलकर करें, वो फलां व्यक्ति है तो अच्छा, कहीं बीच में धोखा ना दे दे, वो फलां है तो ठीक लेकिन ऐसा ना हो मेरे साथ गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये जो हमारी सच्ची कमाई है इसमें हर चीज की गारंटी है। हमारा साथी भी कैसा है, साथी पक्का है या नहीं है, पक्का है हा? हम चाहे छोड़ दें, हम गड़बड़ कर दें लेकिन वो साथी छोड़ता नहीं है, जल्दी नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। कभी बीच में माया का चक्कर आ भी जाए तो भी कैसे ना कैसे करके बच्चों को खींचता है, बच्चे कहां जा रहे हो। फिर हमें हमारे भविष्य की स्मृति दिलाता है। तो कितना अच्छा साथी है, क्या मुझ आत्मा को अपने उस साथी के लिए इतना प्यार है। तो हम जल्दी से कह देते हैं क्या करें बहन जी, घर गृहस्थी में रहते हैं ना, प्रवृत्ति में रहते हैं ना, बाल बच्चों में रहते हैं ना, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ऐसे हैं ना, मेरा बहू बेटा ऐसा है ना, है ना है ना है ना करते रहते हैं, है भी और ना भी, दोनों काम चलते रहते हैं। लेकिन मेरा सच्चा साथी वो सर्वशक्तिवान है ना, नहीं है ही वो साथी, जन्म जन्मांतर का साथी है, कल्प कल्पांतर का साथी है। इस कल्प में मिले हैं, पिछले कल्प में भी मिले थे, अगले कल्प में फिर मिलेंगे, गारंटी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी है, हे अर्जुन हम और तुम पहले भी कई बार मिले हैं, अब भी मिल रहे हैं, फिर मिलते रहेंगे। पर पहले हम समझते नहीं थे कि इसका मतलब क्या है, पहले भी हम मिले हैं, कब मिले हैं, अब हमें समझ आता है। बाबा ने समझ दी है, ये सृष्टि चक्र है, इस चक्र ये चलता रहता है, इस चक्र में हम आत्माएं आती रहती हैं, अपना पार्ट प्ले करती रहती हैं। तो पार्ट किसको प्ले करना है, पार्ट तो आत्मा को करना है ना, मुझ आत्मा को पार्ट प्ले करना है। तो मैं आत्मा कैसा पार्ट प्ले करूं, कैसा पार्ट प्ले करूं, अभी आप सामने बैठे हैं तो कैसे भी बैठ जाएंगे, कोई सोफे पे है, कोई नीचे है, कोई कुर्सी पर है, लेकिन अगर आप यहां मंच पे आके सामने बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, थोड़ा अंतर आएगा या नहीं आएगा, कहेंगे नहीं सामने बैठे हैं भाई ठीक से बैठो, ऐसे ऐसा दो चार बार करके नहीं ठीक से बैठो सामने, इतने भाई बहनों के बीच में बैठे अंतर आ जाता है। तो बाबा ने स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम एक्टर हो, सृष्टि रूपी रंगमंच पर हो, हमें तो सारी सृष्टि देख रही है, फिर मैं ये कैसे कह सकती हूं क्या करें, प्रवृत्ति में रहते हैं ना, बच्चे नहीं मानते हैं ना, बहू बेटा ऐसे है ना, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, मैं कैसा हूं, मैं एक्टर मैं कैसा हूं। एक्टर तो वही बढ़िया है ना जो अपना रोल अच्छे से प्ले करता है, कहीं भी रहता है लेकिन अपने रोल को प्ले कर रहा है, उसी के लिए ताली बजती है, दूसरों के लिए नहीं बजती है। तो मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरा रोल इतना अच्छा हो, बाबा तो कहता ही है वाह बच्चे वाह, सारा समय कहो वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हर चीज के लिए बाबा ने तो हमें सिखाया है वाह वाह वाह। तो हम बच्चों का रोल अच्छा हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारी चाहिए मन की एकाग्रता, मेरा मन एकाग्र हो, ऐसे नहीं अभी ये किया अभी ये किया, कई ऐसे ही करते रहते हैं, थोड़ा सा काम अभी ये कर लिया फिर वो बीच में छोड़ दिया फिर दूसरा ले लिया फिर दूसरा ले लिया। हम संगम युग की घड़ियों में अपना भाग्य बनाने के लिए बैठे हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, कौन कौन भाग्यवान बनना चाहते हैं, कौन कौन भाग्यवान, तो कहेंगे भाग्यवान तो हम सब बनना चाहते हैं। फिर भाग्य बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ ये मंत्र पक्का कर लो, भाग्य विधाता बाबा मुझे मिला है, मैं भाग्य विधाता बाबा की छत्र छाया में हूं, बस भाग्य विधाता बाबा मेरा साथी है, भाग्य विधाता मेरा है, भाग्य विधाता स्वयं आया है, अब मुझे क्या करना है, फिर मैं इधर उधर क्यों भटकूं, ना स्थूल में ना सूक्ष्म में। मधुबन में आते हैं ना, यहां क्लास में बैठे हैं तो एकदम शांत, क्लास का पूरा पूरा आनंद लेते रहते हैं, भाई फलाने ने क्लास कराई, फलाने ने कराई, ये बात बहुत अच्छी थी, ये बात बहुत अच्छी थी, फिर यहां से उठकर वहां तक जाएंगे, बस फिर वही बातें, कल जाना है परसों जाना है फिर ये होगा फिर ऐसा होगा, फिर ट्रेन में ऐसा था इस बार ऐसा हो गया इस बार ऐसा हो गया, बस फिर इसमें लग जाते हैं। इस बार ये हमें पक्का करना है, ये जो हमें लगता है ना हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं बहन जी क्या करें, घर गृहस्थी के लफड़े बहुत हैं, घर गृहस्थी के लफड़े नहीं है लेकिन हमारा उनके लिए वर्णन बहुत है। अगर मान लो किसी के जीवन में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, कुछ चोरी हो गई, वो कभी उसको याद कहते अरे अब उसको तो भूलो, हो गया, बस भगवान ने बहुत बचाया, बाबा ने बहुत बचाया, मुझे तो बाबा ने बस यहां खड़ा कर दिया, फिर ऐसे कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते बार बार हाय क्या करूं मेरे साथ ऐसा, वो जब होता है तो बेशक एक दो दिन हाय हाय करेंगे, फिर बात वाह बाबा शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा मुझे तो भगवान ने बचा लिया। बाबा भी हम बच्चों को अब यही शिक्षा देते हैं, हम ब्राह्मण बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, मेरा एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए, हर सेकंड समर्थ हो, हर सेकंड सर्वशक्तिवान को अपना साथी बनाकर रखूं, हर सेकंड महसूस करूं सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है, कोई आकर हमें और बातें सुनाए भी कहे भी, अरे तुम्हें पता पड़ा वहां ऐसे हो रहा है, वो फलाने भाई बहन ने ऐसा कर दिया, फलानी जगह का भाई या बहन वो ऐसे हैं, बोलो ये मत सुनाओ। बाबा क्या सुना रहा है, बाबा क्या दे रहा है, बाबा भाग्य बांट रहा है, बाबा नई दुनिया में ले चल रहा है, बाबा विश्व का मालिक बनाने आया है। अगर अभी आप सबको कहना अच्छा चलो आप सब जो जो बातें करनी है करो, जो आप जहां जहां बैठे हैं अपने साथी, जो भी बैठे होंगे अपने साथी के साथ बैठे होंगे, कोई ना कोई मित्र दोस्त के साथ बैठे होंगे, बातें करो, हम सब बातें करने लग जाएंगे, फिर देखो इस हॉल में कितना आवाज हो जाएगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, भले हमें कहा है कि अच्छा आपको जो करना है करो, बातें करो, आपस में मिलो, लेकिन हम बाबा के घर में आए हैं, हम तो बाबा से मिलने आए हैं, हम तो बाबा की सुनने आए हैं, हम तो बाबा से लेने आए हैं। भले हमें छूट मिली, अच्छा जो बातें करनी है करो, जो करना है करो, मुझे तो अब यही करना है, बहुत अच्छा हुआ हमें कहा जो करना है करो, बस मैं तो बाबा के आगे बैठी हूं। बाबा ऐसे नहीं चलो छूट मिल गई, अरे मैं सवेरे से सोच रही थी अपने घर में फोन करूं, तो मोबाइल घुमाने लग जाएंगे। आजकल ये खिलौना तो हम सबके पास है ना, लेकिन मुझे ये लगन हो मोबाइल नहीं, लेकिन मैं तो कहां हूं, बस मैं तो बाबा के पास हूं, बस मुझे तो अभी बाबा के पास बैठना है, इतना हमें मौका मिला है, इतना हमें भाग्य मिला है, बस बाबा मेरा हाथ आपके हाथ में है। अंदर में हमारी ये लगन हो, एक भी सेकंड हमें इधर उधर नहीं करना है, तो समय की वैल्यू, मेरा समय वेस्ट ना जाए। एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। बाबा ने तो हमें कितना होमवर्क दिया है, हमने दादियों को देखा, मम्मा बाबा को देखा, जो समय मिलता था बाबा की मुरली पढ़ते थे। हम तो एक बार सवेरे सुन ली ना मुरली, पूछेंगे मुरली सुनी, कहेंगे हाँ बहन जी सवेरे फलाने मुरली सुनाई थी, मैंने मुरली सुनी भी, पॉइंट भी लिखे, दिन में दो बार उसको रिवाइज भी कर लिया, चल मेरे भाई हो गया काम पूरा। लेकिन चाहे हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, हमने मम्मा को भी देखा, जहां समय मिलता था मुरली मम्मा के ऐसे पास रहती थी, मुरली पढ़ने लग जाती थी, क्योंकि बड़ी विचित्र बात है। अभी हम आपको भी कहें ना कोई सवेरे की मुरली को कौन रिपीट करेगा, तो कहेंगे क्या कहा था आज बाबा ने, हाँ बाबा ने कहा था बच्चे मुझे याद करो, और क्या कहा था, क्यों याद करो, वो रेफरेंस याद नहीं आएगा, कैसे याद करो वो याद नहीं आएगा, बाबा ने ये कहा था मुझे याद करो। बच्चे जब याद करते हो ना तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, कैसे आत्मा समझो वो भी याद नहीं रहेगा। तो बाबा मुरली जो चलाते हैं, अगर हम उसको सुनते हैं ध्यान से, तो बड़ी सिंपल सी, बाबा वही तो कहता है रोज रोज, बस बच्चे मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, लेकिन बाबा कौन सी युक्ति, कौन सी विधि सुना रहा है, कैसे अपने को आत्मा समझो। कभी बाबा कहता है बच्चे ये महसूस करो, हम अपने घर से आए हैं यहां खेल खेलने, तो जब मुझे ये स्मृति आएगी मैं खेल खेलने आई हूं आत्मा, तो मैं खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं तो जो खेलेगा वो कभी जीतेगा भी और कभी हारेगा भी। जो खेलेगा वो खेलते खेलते कभी गिरेगा या नहीं गिरेगा, कभी गिर भी जाएगा, कभी चोट भी लगेगी। जो खेल खेलेगा चलते चलते कोई पीछे से आएगा वो धक्का भी मार देगा। तो अगर मैं खिलाड़ी हूं, अब आज मेरी किसी ने बुराई कर दी, किसी ने मेरी दो बातें कर दी, तो मुझे अरे ये बहन ये भाई, अरे मैं बताऊंगी ये कैसा है, अरे उसका क्या बताना, ये हम खेल खेल रहे हैं, उसने खेल में मुझे धक्का मारा कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है। खेल में भी कई बार आप देखेंगे बच्चे होते हैं खेलते हैं, कोई कोई को तो जरा सा हल्का सा यूं धक्का लगेगा गिर जाता है, और कोई कोई मजबूत होता है थोड़ा ठोकर खाता है, एक दो कदम ऐसे लड़खड़ाते हैं फिर वो आगे चल देता है, दौड़ता है भागता है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, किसी ने हमारी बुराई कर भी दी, किसी ने थोड़ा गलत कह भी दिया, मैं तो आगे चलूं, मैं पीछे क्यों जा रही हूं। उसको बल्कि थैंक्स दो, क्योंकि जो धक्का मारेगा वो कहां मारेगा, आगे ही तो मारेगा ना, अच्छा हुआ मेरे कदम दो जरा ज्यादा जल्दी उठे। लेकिन हम वहीं अटक जाते हैं। तो बाबा जो कहता है प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो, वो किससे निवृत्त रहो, प्रवृत्ति में रहते हुए। प्रवृत्ति का सिंपल अर्थ तो यही है, घर गृहस्थी में रहते हैं, पर परवृत्ति, मेरी जो वृत्ति है अंदर की जो वृत्ति है वो कहां रहे, वो इस दुनिया और दुनियादारी की बातों में ना रहे, पर वृत्ति, ये वृत्ति ऊपर रहे, परे रहे, मैं तो बाबा की हूं बस और भाग्यवान हूं, अब तो मुझे बाबा की पहचान मिली है मुश्किल से, मैं भाग्यवान हूं मुझे भगवान ने अपना बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने मुझ आत्मा को चुना है। आप जहां जिस शहर में रहते होंगे, जिस कॉलोनी में गली मोहल्ले में रहते होंगे, कितने लोग होंगे, इतनी बड़ी कॉलोनी 100 लोग रहते हैं, बाबा ने केवल आपको चुना है, कितने भाग्यवान हूं। भगवान को मैं आत्मा पसंद आई, भगवान ने मुझे पसंद किया है, ये हम नहीं सोचते हैं। लेकिन इसने मेरे लिए क्या सोचा, उसने मेरे लिए क्या कहा, उसी में उलझे रहते हैं। इसको तो मेरे पर विश्वास ही नहीं है, ये मुझे क्यों देंगे ड्यूटी। अरे भगवान को मेरे पर विश्वास है, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है। कौन सी ड्यूटी मिली है आप लोगों को, कोई ड्यूटी या नहीं मिली है, कौन सी ड्यूटी मिली है, कौन सी ड्यूटी मिली है, नई दुनिया की स्थापना करनी है। हम सब बाबा के बच्चे यहां किस लिए बैठे हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए, अपना भी भाग्य बनाने के लिए, अनेकों का भाग्य बनाने के लिए। सवेरे उठकर रोज अपना कॉपी पेन निकालिए, डायरी निकालिए, लिखिए भगवान ने मुझे अपना क्यों बनाया, भगवान ने मुझे क्यों चुना है। मैं आत्मा, भाग्यवान आत्मा, भगवान द्वारा चुनी हुई सिलेक्टेड आत्मा हूं, वह मेरा भाग्य। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वहां प्रेसिडेंट आपको कोई बना दे, सेक्रेटरी बना दे, बड़ा खुश होते हैं, कहते बहन जी इस कॉलोनी का मैं सेक्रेटरी हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। और भगवान ने आपको क्या बना दिया है? नई दुनिया की स्थापना के लिए जिम्मेवार बनाया है, सेवाधारी बनाया है, उसकी खुशी नहीं है? है खुशी? बाबा ने मुझे चुना है नई दुनिया की स्थापना के लिए, किस किस को खुशी है? याद किस किस को रहता है? याद किस किस को रहता है? भगवान ने मुझे चुना है, तब हाथ नीचे हो जाते हैं, थोड़े से हाथ उठते हैं। ये स्मृति को पक्का करना है। समझ में आई बात? क्या करना है? ये तो हमने मान लिया, भगवान ने मुझे चुना है, मैं नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हूं, इसलिए मैं बाबा को याद करती हूं, बाबा का संदेश भी दूसरों को देना है, राइट है। लेकिन कर्म करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, ये स्मृति बनी रहे कि वाह भगवान ने मुझे चुना हुआ है, तो आपको घर गृहस्थी में भी जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपके जो काम हैं, वो आपको कठिन नहीं लगेंगे। जैसे आपके सेंटर पर कोई आज विशेष कार्यक्रम हो और आपके घर में भी कोई विशेष मेहमान आने हो, तो आप कहते हो ना कि भाई आज तो हमारे वहां कार्यक्रम है, चलो जो मेहमान आएंगे इनको भी ले चलेंगे। या फिर उनसे आप कहेंगे भाई एक घंटे के लिए मैं जाऊंगा और फिर आता हूं आपसे मिलने। कोई ना कोई तो हम एडजस्टमेंट करते हैं ना। संगम युग की घड़ियों में मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए सदा एडजस्टमेंट करनी है, इसमें पीछे नहीं रहना है। भाग्य विधाता आया, भाग्य बना रहा है, और मैं कहां भटक रही हूं, भटक रहा हूं। कोई सेवा है भी, कोई कार्य है भी, कोई समस्या है परिवार की, कोई समस्या है इस तन की, शरीर की, उसमें ना उलझे रहो। हाय क्या करूं, मेरे तो हाथ में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, उसी में हाय हाय करते रहते हैं। घुटने में दर्द है, कोई बात नहीं। हाथ में दर्द है, कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ है। बाबा आप सुप्रीम डॉक्टर हो ना मेरे, बाबा ये भी अब ठीक होना चाहिए, बस बाबा को देखो हर घड़ी। इसका मतलब ये नहीं हम दवाई नहीं करें, दवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम डॉक्टर को अपने साथ रखेंगे हर घड़ी। मेरा सुप्रीम डॉक्टर स्वयं बाबा है। बाबा आपको अपने आप कुछ और भी टच कर देगा। आप जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे होंगे, बाबा उसको भी कुछ टच करेगा। वो लिखते लिखते ये नहीं, इसको ये दवाई दी जाए, फिर कहेंगे डॉक्टर ने ना दवाई दी, दो दिन खाई मैं तो ठीक हो गई। तो सारे जो मेरी अपनी अंदर की वृत्तियां हैं, संकल्प हैं, वो किस प्रकार के हैं, उसी प्रकार का हमें आगे का प्रोग्रामिंग होती है। एक ही डॉक्टर होता है, उसकी दवाई से एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा नहीं होता है। दूसरा कहता है अरे एकदम बेकार है, मैंने तो इससे कितनी बार दवाई ली, मैं तो कभी ठीक ही नहीं हुई। दूसरा कहता है अरे मैं तो इसकी एक ही गोली खाता हूं, मैं तो ठीक हो जाता हूं। निश्चय वाइब्रेशंस। तो वर्तमान समय में रहे घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल बनाइए, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाइए। अपनी सोच को बहुत बहुत शुद्ध बनाइए। ऐसे नहीं क्या करें, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी युगल ऐसी है, अरे कैसे हैं, मेरा बहू बेटा कैसा है, मेरी युगल कैसी है। जैसे मेरे कर्म हैं, जैसे मेरी सोच है, क्या विचार है, ये राइट है या नहीं है। हम सब कोई एक ही स्थान पे तो नहीं पैदा हुए ना, कोई कहां पैदा हुआ, कोई देश में हुआ, कोई विदेश में हुआ। जो देश में हुआ कोई देखो कहां हुआ, कोई आसाम में पैदा हुआ, कोई यूपी में हुआ, कोई एमपी में हुआ, कोई पंजाब में हुआ, कोई कहां हुआ। ये सब हमारे अपने अपने संस्कार हिसाब किताब अनुसार है। हम जहां भी पैदा हुए हैं, जो भी हमें अड़ोस पड़ोस मिला है, जो भी साथी मिले हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाबा का आवाहन करें, बाबा को धन्यवाद करें, बाबा मैं कहीं भी पैदा हुई हूं पर आपने मुझे चुन लिया, वाह बाबा। फिर मेरे पड़ोसी कैसे भी हैं, मेरा परिवार कैसा भी है, मेरे बाल बच्चे कैसे भी हैं, बहु बेटा भी कैसे हैं, बाबा कितने अच्छे हैं, इनके सदके ही तो मैंने भी आपको पहचाना है, थैंक यू बाबा। हर घड़ी दिन में कम से कम भी 1000 बार बाबा को थैंक्स करो, हर बात के लिए थैंक्स करो। और मुश्किल नहीं है, आप करके देखिए जरा 5-6 दिन, अभी मधुबन में है यही करना शुरू कर लीजिए। आज अभी से ही करिए, चलो सोने तक, अभी 7:30 होने वाला है, मुझे 10 बजे तक कम से कम भी 100 बार बाबा को थैंक्स कहना है। थैंक्स कहिए, हर बात के लिए थैंक्स है, वाह बाबा। आपको हमारी कितनी चिंता है, मेरा ये समय सफल हो। बाबा ने प्रबंध किया है ना, हम सब यहां बैठे हैं, नहीं तो घूमते रहते इधर उधर। नहीं, सिस्टम बना हुआ है, सब आएंगे, बैठेंगे, क्लास करेंगे, योग करेंगे। थैंक यू बाबा, दिल से, ऊपर से नहीं, बहन जी ने कहा था, दिल से सचमुच थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आप बाबा कितना ध्यान रखते हैं ना, नहीं तो हम इधर उधर घूम रहे होते। बहुत से भाई बहन है, अभी भी देख लो कितने भाई बहन, मैं जब आती हूं तो यही देखती हूं, कितने भाई बहन हॉल में बैठे हैं। जरा बाहर निकल के देखिए कितने भाई बहन घूम रहे हैं, फिर जरा किचन की ओर चले जाइए, कितने भाई बहन तो चाय पीने में और खाना खाने में लगे हुए हैं, है कि नहीं है। लेकिन वाह बाबा, आप मेरी ज्ञान रत्नों से पालना कर रहे हैं, थैंक यू बाबा। आप मुझे शक्ति दे रहे हैं, मेरी बुद्धि आपसे लगी हुई है, थैंक यू बाबा। खाया पिया तो हमने सारा जीवन यही तो किया, और क्या काम किया है, खाने पीने की थोड़ी आप सबको कोई कमी थी, अपने अपने घर में सब बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं। कमी थी तो बस एक यही थी, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाए। तो प्रवृत्ति में रहते हुए मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, समय को सफल करना है, जो भी मेरे बाल बच्चे अड़ोसी पड़ोसी हैं उलाहने मत दीजिए उनको, ये मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है, मेरी युगल ऐसी है, सबको शुक्रिया अदा करो। जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे बुद्धि बाबा से लगती जाएगी। क्योंकि अब उलाना नहीं है ना, क्या करूं, ये घर का नौकर है, चार दिन तो छुट्टी मारता है फिर आता है, उसी से उलझे रहते हैं। घर में काम करने वाली माई आती है, उसी से उलझे रहते हैं। अरे नहीं आई कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं बाबा को भी याद करूं और अपने घर के अपने बर्तन अपने आप साफ करूं। तो बाबा हमें कितनी शक्तियां दे रहा है, बाबा मेरे मन बुद्धि को कितना साफ कर रहा है। ये ना सोचो हम जाके देव देवता कैसे बनेंगे, मेरा मन बुद्धि साफ नहीं है तो मैं देवता बन जाऊंगी क्या, मैं सत्युग में जाऊंगी और मन बुद्धि अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे संकल्पों से मैं सत्युग में जाऊंगी क्या। सत्युग में जाने वाले हर घड़ी शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, बाबा आप हमें सत्युग में ले चल रहे हो, वाह बाबा कितना अच्छा मेरा भाग्य बना रहे हो। योग में बैठना माना ये नहीं अभी हम यहां बैठ गए चलो दो घंटा योग करेंगे, बैठ गए दो घंटा, गीत चलाने वाले ने गीत चला दिया, सामने बैठ के कराने वाले ने कराया, कोई कोई तो अपने वो मोबाइल का पता नहीं वो क्या चला लेंगे, कान में लगा लेंगे, ये कौन सा योग है। योग माना क्या, बस मैं और पापा। महसूस हो बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, महसूस हो बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। तब हम जब अपने घर गृहस्थी में कर्म करेंगे तब लगेगा बाबा मेरे साथ है, योग में बैठे हुए हैं तो पता ही नहीं कहां बैठे हैं। अभी अपने अपने को देखो कहां बैठे हुए हो, मुझे तो अच्छी सीट मिली है, मैं अच्छे सोफे पे हूं, अच्छे कुर्सी पे हूं, या मैं बाबा के पास हूं, मैं बाबा के सामने हूं, एकदम हल्के होके बैठे। साकार में जब बाबा थे, हम बाबा से मिलते थे तो बाबा के सामने जाते एकदम भूल जाते थे। तो अक्सर करके उस समय भाई बहने अनुभव सुनाया करते थे, अरे मैं तो बाबा के सामने गया या गई, मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, मैंने सोचा था मैं बाबा से ये पूछूं ये पूछूं, बाबा के सामने जाते ही मुझे तो सब भूल गया। तो भूल गया का मतलब क्या था, बाबा के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन बाबा स्वयं इतनी शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में होते थे, जो सामने आता था बाबा उसको भी उसी स्थिति में स्थित कर देते थे। और हम तो क्या करते हैं, क्लास है चलो आके बैठेंगे, खुद बैठेंगे, साथ में बैठे हुए को भी हिला देंगे थोड़ा सा, ऐसे नहीं चलो मैं दो मिनट लेट आई हूं, या लेट भी नहीं ठीक टाइम से ही है, तो अपना आराम से आके ऐसे बैठ जाओ ना, जब तक इधर इधर वाले को हम यूं हिला ना दें तो क्या मजा आया। आगे पीछे वाले चार लोगों से जरा ऐसे ऐसे ना कर लें तो क्या मजा आया। आते ही बस मैं और बाबा। तो ये बाबा केवल मुख से कहना नहीं है, लेकिन बाबा का वो रूहानी नशा मुझे चढ़े, जो हमने बाबा को देखा, मम्मा को देखा, मम्मा बाबा को ये रूहानी नशा चढ़ा हुआ रहता था, बाबा मेरे साथ है। ऐसे नहीं मेरा काम नहीं हो रहा था, मैंने सोचा बाबा मैं तो गुरुवार को भोग लगाऊंगी, ब्रह्मा भोजन करा दूंगी, बस मेरा तो हो गया, तो इसलिए लो, भगवान क्या रिश्वत लेके काम करता है। हम हैं ही बाबा के बच्चे, हैं ही बाबा की छत्र छाया में, हर घड़ी ये महसूस करें। बाबा का हाथ, वरदानी हाथ, शक्तियों का हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। वो ऐसे नहीं बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये वाला हाथ नहीं। महसूस हो बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें, बाबा का प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। और कुछ भी स्मृति ना आए तो अभी आप जहां जहां बैठे हैं रिलैक्स होके बैठिए। आपको जो कुछ इधर उधर रखना है रख दीजिए, और अपने मन बुद्धि को ले चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा।